ये ज़कात असल में है क्या? इस्लाम ने ये जो इन्फाक की बात की है, खर्च करने की बात की है, वो तो जा बजा की ही है, फिर स्पेसिफिकली ज़कात ही को लाजमन क्यों करार दिया गया है?
इन्फाक का हुक्म तो एक अमूमी हुक्म है, यानी हम मुसलमानों को जो बुनियादी अखलाकियात सिखाई गई है उसी में ये तय कर दिया गया है कि हमें इंसाफ से काम लेना है, हमें दूसरों पर एहसान का रवैया अख्तियार करना है और हमें अपने अज़्ज़ा अक़रबा पर ख़र्च करना है।
ठीक,
जो कुछ अल्लाह ने हमको माल दिया है वो दिया ही इसलिए है कि हम उनसे अपनी ज़रूरतें पूरी करें और ये देखें कि हमारे अबनाए नौ की कोई ज़रूरत तो नहीं है जो हमसे मुतल्लिक हो गई है। हमारे अज़्ज़ा अक़रबा हैं, हमारे करीबी दोस्त हैं, जिन लोगों से हम मिलते हैं, हमारा माशरा है, उसका भी हक़ हम पर कायम कर दिया गया है। चुनांचे कुरान मजीद ने इसको बयान भी किया है कि वफ़ी अम्वालिकुम हक़्कुल लिस्साइल वल महरूम, यानी जो लोग किसी वजह से महरूम रह गए हैं या वो अपनी कोई ज़रूरत लेके तुम्हारे पास आ जाते हैं तो उनका हक है। इन्फाक की तालीम ये जानते हैं आप, कुरान मजीद में जगह जगह दी गई है, अल्लाह ताला ने फरमाया है कि इसका बड़ा गैर मामूली अजर है। इस इन्फाक में से एक हिस्सा वो है जिसको लाजिम कर दिया गया है।
अच्छा,
और यही तरीका दीन के तमाम अहकाम में है। देखिए, अल्लाह की हम इबादत करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, हम नवाफिल पढ़ते हैं, सुबह शाम पढ़ते रहें, कोई और नेकी का काम करना चाहते हैं अपनी सतात के मुताबिक जितना चाहे करते रहें, तो ये हमारी सवाबदीद पर होता है, यानी हम कितना करेंगे, हमारा ज़ौक, हमारा रुझान, हमारी मशगूलियतें ये तय करती हैं।
ठीक,
उसके बाद एक हिस्सा वो है जिसको मुकर्रर कर दिया जाता है। ज़कात को मुकर्रर करने की दोनों वजह हैं, यानी ये पहलू भी कि आदमी को ये समझना चाहिए कि उसके माल में जो अल्लाह ने हिस्सा मुकर्रर किया है वो उसे हर हाल में अदा करना है, और दूसरा पहलू उसका ये है कि हम जब किसी माशरे में रहते हैं तो माशरे का नज़म चलाने के लिए कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करने की ज़रूरत होती है।
अच्छा।
कोई माशरा भी इसके बगैर नहीं चल सकता। जब हम दुनिया में माशरे की तारीफ पढ़ते हैं तो हमें मालूम होता है कि जब इब्तदा में कबाइली ज़िंदगी थी और उसमें कबाइली शूख के ज़िम्मे ये काम लगाया गया कि वो कबीले के नज़्म व नस्क को कायम रखें, तो उनके लिए भी एक हिस्सा मुकर्रर किया गया जो सब लोग अदा कर देते थे। अब रियासत में आप इसी चीज़ को टैक्स कहते हैं, तो ये दोनों पहलू हैं। इन दोनों पहलुओं से अल्लाह ताला ने हम पर ज़कात फ़र्ज़ की है। अपनी हकीकत के एतबार से ज़कात इबादत है, यानी गोया इसकी तस्वीर ये बनती है कि हमारा परवरदिगार है, ज़मीन व आसमान का बादशाह है, वही हमारा खालिक है, उसने हमसे ये कहा कि अपने माल का इतना हिस्सा लाजमन निकाल कर मेरी बारगाह में पेश कर दो।
ठीक है,
ज़ाहिर है कि जब हम इबादत करते हैं तो असल में हम अल्लाह ताला की तरफ रजू करते हैं, ये मुतवज्जहन इलल्लाह होती है, खुदा की बारगाह में जाकर अर्ज न्याज करते हैं, सजदा करते हैं, रुकू करते हैं, क्याम करते हैं, इसी तरह अपना माल पेश करते हैं। ये आपके इल्म में होगा कि यही वो चीज़ है कि जिसको सामने रख कर आपने देखा होगा कि जो लोग बुतप्रस्ती करते हैं वो भी कोई खाना या कोई और इस तरह की चीज़ जाके अपने बुतों की खिदमत में पेश कर देते हैं। असल में ये अल्लाह का हक है।
ठीक,
इसी को न्याज भी कहा जाता है, यानी अल्लाह की नज़र कर देना किसी चीज़ को, अल्लाह के हुजूर में न्याज के तौर पर पेश करना। इसी वजह से चूँकि इससे शिर्क पैदा होता है तो नज़र और न्याज को अल्लाह ही के लिए ख़ास कर दिया गया है, यानी नज़र भी अल्लाह ही की दी जा सकती है और न्याज भी अल्लाह ही के हुजूर में पेश की जा सकती है। ये बायस है कि जो इसको एक इबादत बना देता है, यानी ये दर हकीकत ऐसी ही इबादत है जिस तरह की नमाज इबादत है, जिस तरह की रोज़ा इबादत है, जिस तरह की हज उमरा इबादत है, जिस तरह की कुर्बानी इबादत है। तो ज़कात भी इसी तरीके से इबादत है, इसे इबादत ही में हम शामिल करते हैं। खुद मैंने अपनी किताब मीज़ान में जब इसका बाब बांधा है तो उसको उसी के तहत रखा है जहाँ इबादत बयान की गई।
ठीक,
अपनी असल हकीकत के एतबार से ये इबादत है, लेकिन ज़ाहिर है कि इसमें कोई माल दूसरों को देना है और जब कोई मुसलमानों का नज़्म इज्तमाही कायम हो जाए तो ये उसको अदा करना है, तो एक लिहाज से अगर आप देखें तो ये एक मुस्लिम माशरे में टैक्स की सूरत इख्तियार कर लेती है। यानी दूसरे लफ्ज़ों में आप यूँ कहिए कि अल्लाह ताला ने जो रियासत का या माशरे का हक कायम होता है वो भी मुसलमानों के लिए मुतय्यन कर दिया।
आपने इसे टैक्स के ही नेमुल बदल करार दिया है, यानी टैक्स ही है ये,
यानी दोनों पहलू हैं इसके,
दोनों पहलू।
हमारे यहाँ ये अपनी असल हकीकत के एतबार से इबादत है, ये इबादत ही के जज्बे से अदा की जाती है। इसमें असल हकीकत जिसको पेश नज़र रहना चाहिए वो ये है कि हम असल में खुदा की बारगाह में नज़र पेश कर रहे हैं।
राइट,
यानी यूँ समझ लीजिए कि हमने पेश कर दी और परवरदिगार ने उठाकर उसको माशरे को दे दिया,
सोसाइटी की वेलफेयर,
सोसाइटी के लिए।
ठीक है,
तो असल हकीकत इसकी यही है, लेकिन एक दूसरा पहलू जो इसका رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے بھی نمایاں ہوا، دوسرے پیغمبروں کی تعلیمات سے بھی نمایاں ہوا، اور جس کو بالکل ایک قاعدے کے طور پر ہمارے ہیں یا سنت کے طور پر جاری کر دیا گیا، وہ یہ ہے کہ یہ ریاست کا حق ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ ایک ٹیکس بھی بن جاتا ہے۔ وہ یوں سمجھ لیجئے کہ دنیا کی دوسری اقوام کے ہاں تو ٹیکس دینا یا نہ دینا اس کا تعلق اصل میں فرد اور معاشرے کے باہمی تعلق سے ہے، ہمارے ہاں اس کے اندر ایک اور چیز بھی آ گئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم در حقیقت خدا کے حکم پر معاشرے کی خدمت کے لیے یہ رقم پیش کر دیتے ہیں۔ تو اس طرح سے ٹیکسیشن کے پیچھے بھی عالم کا پروردگار آ گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ سنت قائم کی گئی ہے کہ جب مسلمانوں کا کوئی اجتماعی نظم قائم ہوگا تو وہ زکوٰۃ لے گا۔ اور اسی سبب سے اگر آپ دیکھیں تو ہمارے جو قدیم مفکرین ہیں، مثال کے طور پر ابن خلدونی کے مقدمے کو دیکھیے، تو وہ ایک مسلمانوں کی ریاست کی بنیادی چیز یہی واضح کرے گا کہ ان کے ہاں زکوٰۃ ہوتی ہے، ٹیکس نہیں ہوتا۔
ٹھیک ہے۔